गिनती अध्याय 29। आइए हम अपने आज के अध्ययन को आरंभ करें और गिनती की पुस्तक अध्याय 29 खोल लें। अध्याय 28 में मूसा ने इसराइल वंशियों को विभिन्न बलिदानों के निर्देश दिए हैं। ये बलिदान उन्हें प्रतिदिन चढ़ाने थे। उसने उन बलिदानों का भी उल्लेख किया जो सबत के दिन चढ़ाए जाने थे। कुछ बलिदान ऐसे भी थे जो उन्हें महीने के पहले दिन चढ़ाने आवश्यक थे। फसा के पर्व पर और पेंतिकोस्त के दिन के भी विशेष बलिदानों का उसने उल्लेख किया था। अध्याय 29 में वो वर्ष के सातवें महीने में चढ़ाई जाने वाली बलि की चर्चा भी करता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि अंक 7 उनके लिए एक विशेष अंक है। जहां तक बाइबल का संबंध है, सातवां महीना उनके लिए विशेष महीना था। उनका सातवां महीना हमारे कैलेंडर की तुलना में लगभग अक्टूबर के निकट आता है। यहूदियों का कैलेंडर हमारे कैलेंडर से अलग चलता है। सच तो यह है कि उनके पास दो कैलेंडर है, एक धार्मिक कैलेंडर और एक कार्यकारी कैलेंडर, और उनका धार्मिक कैलेंडर अप्रैल से आरंभ होता है। इस तरह अक्टूबर उनका सातवां महीना होता है। यही महीना तुरी के बजाने से आरंभ होता है। पहले दिन से ही तुरी बजने लगती है और बलिदानों का चढ़ाना आरंभ हो जाता है। ये बलिदान नित्य चढ़ाए जाने वाले बलिदानों के अतिरिक्त विशेष बलिदान होते थे। ये अतिरिक्त बलिदान अध्याय 29 के आरंभ में दिए गए हैं। इसी अध्याय में वो आगे चलकर योम किपुर अर्थात 10वें दिन प्रायश्चित दिवस पर चढ़ाए जाने वाले बलिदानों की चर्चा करता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रायश्चित दिवस पर सबत बलिदान याजक अकेला ही चढ़ाता था। आम तौर पर नित्य चढ़ाए जाने वाले बलिदान याजक वर्ग के सदस्य पारी पारी किया करते थे, परंतु प्रायश्चित दिवस के बलिदान केवल महायाजक चढ़ाता था। इस प्रकार महायाजक उस दिन बहुत अधिक व्यस्त होता था। ये सब उसे स्वयं करना होता था। प्रायश्चित के दिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं होता था, जो यीशु मसीह के कार्य का प्रतीक है, जब उसने अकेले ही हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बनकर बलिदान चढ़ाया। वहां उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। ये ऐसा कार्य था जो उसे अकेले ही करना आवश्यक था। सातवें महीने में एक विशेष पर्व होता था, झोपड़ियों का पर्व, जिसको हम मंडप का पर्व भी कहते हैं, ताकि वे उस समय को याद करें जब वे जंगल में तंबू बनाकर रहते थे। मंडपों का यह पर्व 8 दिन चलता था और पर्व के दिनों में पहले दिन 25 पशु, दूसरे दिन 28 पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, परंतु आम तौर पर प्रतिदिन 30 पशु बलि किए जाते थे। अध्याय 29 में ये सब स्पष्ट किया गया है कि कितने पशु और किस प्रकार के पशु बलि चढ़ाए जाने हैं। इससे हमारा इतना ही सारोकार है कि हम प्रतीति करें कि यीशु मसीह हमारे लिए एक बार बलि हुआ। महायाजक के साथ यीशु की तुलना बड़ी रोचक है। जब वो लोगों की पश्चाताप की बलि लेकर जाता था, सबसे पहले उसे अपने पापों के लिए बलि चढ़ाना होता था। इससे पहले कि वो प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाए। इसके विपरीत यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है, जिसने एक ही बार एक बलिदान चढ़ाया। ये आवश्यक था कि महायाजक प्रतिवर्ष भीतर जाए, परंतु यीशु ने स्वयं को एक बार ही चढ़ाया और पुनः जीवित होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जब तक कि उसके विषय प्रतिज्ञा पूरी ना हो कि उसके शत्रु उसके पांवों की चौक हो जाएंगे, जब तक कि सब चीजें उसके अधिकार में न आ जाएं। यीशु मसीह का एक ही बार का बलिदान इसराइल के पाप के प्रायश्चित के लिए हर वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों की तुलना में श्रेष्ठ है। ये अंतर इब्रानियों की पुस्तक में यीशु के बलिदान और महायाजक के बलिदान में स्पष्ट किया गया है। लेव व्यवस्था और गिनती की पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपके लिए इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन करना सहज होगा और हम उसको ठीक से समझ सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास लेव व्यवस्था और गिनती की पुस्तक की पृष्ठभूमि है, जिसमें बलियों और भेंटों का विवरण और विधियां हम देख चुके हैं और ये भी समझ गए हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। अपनी मन्नतों, स्व इच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्ध और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। गिनती 29 का 39 पद। ये दूसरी बलिया होम बलि, मेल बलि आदि व्यक्तिगत चढ़ावे थे, परंतु अध्याय 29 के चढ़ावे इनके अतिरिक्त थे।